हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम आठवां स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 12। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरः न परः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविन्द दामो धर्माधवीति। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति Sankiram Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundinataranam Grantha Srimad Bhagavatam Mahapuran Ki Jai Ho. आठवां स्कंध अध्याय जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। अत्यंत ही सुंदर रीति से गजेंद्र भगवान को स्तुति करते हुए अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। गजेंद्र कहते हैं कि प्रभु मुझे इस गज योनि से नहीं परंतु बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से इस दुखों भरे संसार से मुक्त होकर निर्वाण सुख को प्राप्त करना है। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संवृते। और ये संसार में ये जो भौतिक प्रकृति है उसके अनुसार भगवान कौन कौन से स्वरूप में अधिष्ठाता बन के किस तरह प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, जबकि वो निर्विशेष है, निर्गुण है, लेकिन फिर भी वो प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं और उनके अधिष्ठाता बनकर इस संसार का सृजन, संहार और पालन करते हैं। ऐसे भगवान की शरण में जाते हुए गजेंद्र श्लोक नंबर 12 में कह रहे हैं, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। गजेंद्र कह रहे हैं नमः। नमः अर्थात मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। शांताय घोराय मूढ़ाय, यहाँ पर जो भगवान है उनके तीन स्वरूपों के विषय में बता रहे हैं। एक शांताय, शांताय मतलब शांत स्वरूप में, जैसे कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और शीरो दक्षाय विष्णु स्वरूप में भगवान किस प्रकार शांत स्वरूप में है और शांत होते हुए भी पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, सत्वगुण में स्थित है और सत्वगुण के में स्थित होकर। हालांकि भगवान निर्विशेष है, आगे वे कहते हैं निर्विशेष है स्वाम, भगवान निर्विशेष है, निर्गुण है, वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, परंतु फिर भी प्रकृति के तीन गुणों के अधिष्ठाता बनकर किस प्रकार से प्रकृति का पालन, संहार और सृजन कर रहे हैं। विष्णु रूप से शांताय रूप में संसार का पालन कर रहे हैं, घोराय रूप में रजोगुण को स्वीकार करते ब्रह्मा बन के इस संसार का सृजन कर रहे हैं, और मूढ़ाय रूप में शिव जी बनकर तमोगुण को स्वीकार करते हैं और संसार का विनाश करते हैं। गुणधर्मिणे, गुणधर्मिणे का मतलब है कि वो भौतिक गुणों, भौतिक जगत के विभिन्न गुणों को स्वीकार करते हैं, भले ही वो निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं निर्विशेष होते हुए भी। शांताय, शांताय का मतलब होता है भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित है। और यहाँ पर बताया कि भगवान विभिन्न स्वरूप स्वीकार करते हैं, जैसे पहले तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के रूप, और इसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान के स्वरूप, भगवान के जो अवतार होते हैं उनके विषय में बताते हैं। जैसे शांताय, शांताय मतलब जो शांत रस में भगवान के अवतार हैं, जैसे श्री राम हैं और भगवान श्री कृष्ण हैं, ये एकदम सबको संतुष्ट करने के लिए संसार में आते हैं। घोराय जैसे नरसिंहदेव भगवान हैं, तो कैसे उग्र रूप में संसार में आए थे, और मूढ़ाय मतलब ऐसे पशु रूप में जैसे विराहदेव। अब विराहदेव भगवान का ही स्वरूप है, वो साक्षात भगवान है, लेकिन जब संसार में आते हैं तो वो लीला कैसे करते हैं। नरसिंहदेव भी भगवान है, साक्षात भगवान है, इतने ही सुंदर है भगवान, सर्व सुंदर है, लेकिन फिर भी संसार में आते हैं तो फिर उस स्वरूप के अंदर रहकर कार्य करते हैं और उस स्वरूप के गुणों को स्वीकार करते हैं। वो भयानक उग्र रूप धारण करते हैं नरसिंहदेव बनकर, और जब विराहदेव बन के आते हैं तो भगवान कैसे सूंघ सूंघ के पशु कोई चीज को सूंघ सूंघ के कैसे स्वीकार करता है, ऐसे भी सूंघ सूंघ के भगवान पृथ्वी की खोज कर रहे थे। वैसे भगवान को पता था पृथ्वी कहाँ है, ऐसा नहीं है कि भगवान को खबर ही नहीं है भगवान सूंघ सूंघ के पृथ्वी का पता लगा रहे, नहीं, लेकिन भगवान की ये लीला है कि वो जो भी स्वरूप स्वीकार करते हैं उसमें पूरा ढल जाते हैं और वो उसी के अनुसार कार्य करते हैं। निर्विशेषाय मतलब ऐसे भगवान का स्वरूप जैसे दत्तात्रेय अवतार है, वो भगवान का ऐसा स्वरूप था जो निर्विशेष का उपदेश दिया। और साम्याय मतलब भगवान बुद्ध जैसे अन्य सारे अवतारों को गजेंद्र कह रहे हैं कि मैं नमस्कार कर रहा हूँ। जी यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक अच्छी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर लहरें आती हैं जाती हैं आती हैं आती हैं आती हैं, ऐसा नहीं है कि आप काउंट कर लो बस इस समुद्र में इतनी लहरें हैं काउंट हो गई, नहीं, वो कंटिन्यूस आती रहती हैं आती रहती हैं आती रहती, तो काउंटलेस है ना। उसी प्रकार भगवान के भी अवतार जो हैं वो असंख्य अवतार हैं। अब इसमें भागवतम में जो 24 अवतार दिए गए हैं तो फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि परीक्षित क्योंकि आपके पास समय कम है इसलिए मैं केवल मुख्य अवतारों के विषय में बता रहा हूँ, लेकिन भगवान के अवतार तो असंख्य हैं। तो आगे कहते हैं नमो ज्ञान घनाय। ज्ञान घनाय मतलब इस भौतिक बुद्धि से भगवान के इन सब स्वरूपों को नहीं समझा जा सकता, भगवान के इस निर्गुण स्वरूप को और भगवान के इस सगुण साकार स्वरूप को, भगवान के पशु स्वरूप को, भगवान के शांताय स्वरूप को, भगवान के घोराय स्वरूप को किसी को भी समझा नहीं जा सकता। कोई ये नहीं सोचना चाहिए ये बहुत बुद्धिमान है तो ये सबको समझ देता है तो भगवान को भी समझ, नहीं, भगवान को बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता, भौतिक बुद्धि भगवान को समझ नहीं सकती। जैसे हमने पहले भी पढ़ा नमो गिराम विदुराय नमस्त चेतसामपि, कि भगवान को न बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है, मन के द्वारा समझा जा सकता है और न ही बुद्धि के द्वारा भगवान के विषय में बताया जा सकता है। तो कैसे भगवान के विषय में समझा, अब यहाँ पर ज्ञान घनाय, यानी जो बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो जाता है, ज्ञान या मतलब जिनका ज्ञान भगवान को भौतिक बुद्धि से जिन्होंने सोच सोच के भगवान को बिल्कुल समझ नहीं सके हैं, निर्विशेष ब्रह्म वो समझते हैं बस भगवान है ही नहीं, भगवान का कुछ भी नहीं है, भगवान निर्विशेष है, तो मानसिक चिंतन करते 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 भगवान की खोज करते करते उनका ज्ञान पथरा जाता है इसलिए वो भगवान के विषय में नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, जो ज्ञानवान है बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो फिर मेरी शरण में आता है और क्या कहता है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। अब वो ज्ञानी नहीं रह जाता, अब वो महात्मा हो जाता है क्योंकि उसने ये जान लिया है वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ भी है वो भगवान वासुदेव ही है, भगवान कृष्ण ही है। तो ये है वास्तविक ज्ञान। श्री प्रभुपाद जी बताएंगे कि जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर हो जाता है तो वह वासुदेव को समझता है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा, तो वो महात्मा बन जाता है। अनुवाद देखिए, मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नरसिंह देव को, भगवान के पशु रूप वराह देव को, निर्विशेष वाद का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण हैं, किंतु भौतिक जगत में सत्व रजो तथा तमोगुण को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर गजेंद्र भगवान के हर स्वरूप को नमस्कार करते हैं। वो जानते हैं कि भगवान साकार है, सर्गुण है, फिर भी निर्गुण स्वरूप धारण करते हैं। भगवान इस प्रकृति में प्रकृति का अंश नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकृति के गुणों को के अधिष्ठाता बनकर उनको स्वीकार करते हैं। तो भगवान के साकार स्वरूप को, भगवान के निर्विशेष ब्रह्म तेज को सबको गजेंद्र नमस्कार पेश करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पिछले श्लोकों में बताया गया है कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य स्वरूप धारण करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था, न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। भले ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, नाम नहीं, स्वरूप ये भौतिक नहीं है, लेकिन तथापि लोकाप्यय संभवायः स्वमायया तान्यनो कालम मृच्छति। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवतारों को स्वीकार करते हैं। उसी चीज को श्री रूपा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल तथा पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 4.7 में कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म की प्रधानता से उत्थान होता है, तो उस समय मैं अवतरित होता हूँ। जब जब भक्तों पर संकट आता है और अधर्मी भक्तों पर अत्याचार करने लगते हैं, तो दुष्टों का विनाश करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत से विपत होने की सदा संभावना रहती है। कि जो भी संसार में भक्ति मार्ग स्टार्ट करता है, क्योंकि अब भौतिक प्रकृति में बहुत सारी ऐसे आकर्षण है जो हमें भक्ति से गिरा सकते हैं, तो हर समय संभावना रहती है कि कहीं हम भक्ति से गिर न जाएं। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अतएव कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। और भगवान संसार में आते हैं और भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं ताकि वो हम सबको कृष्ण भावनामृत से नीचे गिरने से बचा सकें। भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिनको श्रवण करके और शुद्ध भक्त हमको इस तरह से कृष्ण के पवित्र नाम और कृष्ण की कथाओं की ओर आकर्षित करते हैं, ताकि हम भौतिक जगत के इस माया के चक्कर से बचकर भगवान कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने पद से गिरने ना पाए। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, निर्विशेषवादी भी जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं, अतएव यहाँ ज्ञान घना यह शब्द सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिकों के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। ज्ञान घनाय, ऐसे मतलब वो लोग जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, भगवान के नाम को स्वीकार नहीं करते, वो ऐसा कहते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान का ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, भगवान निर्विशेष है। तो ये जो भगवान के विभिन्न अवतार हैं, भगवान जो स्वयं आते हैं संसार में और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में खड़े खड़े ये घोषणा करते हैं कि मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ, मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य हैं, तो ये सब उनको निर्विशेषवादियों को शिक्षा देने के लिए, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चूंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतएव कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। आगे श्री प्रभुपाद जी ज्ञान गणाय शब्द के विषय में कहते हैं कि ज्ञान गणाय जो शब्द लास्ट शब्द है, निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। ज्ञान घनाय शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेषतया उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया है। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है। ये जो भौतिक ज्ञान है जिससे हम ये भौतिक बुद्धि से भगवान समझे नहीं जा सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भौतिक बुद्धि है ना वो तो व्यर्थ है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन तथा गंभीर होता है तो वह वासुदेव को समझता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में बताया गया है, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। ज्ञानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म गुजरने के बाद ये ज्ञानी जो है वो मानसिक चिंतन करता 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 तब कहीं जाकर बहुत जन्मों के बाद जब उसका ज्ञान परिपक्व हो जाता है तब वो इस अवस्था को प्राप्त करता है कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। अतएव यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द व्यवहृत हुआ है। शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। वास्तव में भक्तों ये अत्यंत ही सुंदर बात है कि भगवान, कोई जीव ये नहीं कहता कह सकता कि भगवान मेरे हृदय में है, उनकी प्रेरणा से मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन भले ही भगवान आपको कर्म करने की बुद्धि और शक्ति प्रदान करते हैं, परंतु भगवान कोई कर्म नहीं करते। कर्म तो जीव अपनी महत्वाकांक्षा से करता है, अपनी इच्छा वासना और अपनी लालसा से, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना को तृप्त करने के लिए ही जीव कर्म करता है। जीव सदैव अज्ञानता में रहकर कार्य करता है, और क्योंकि वो अज्ञानता में है इसलिए वो इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए वास्तव में कार्य करता है। तो भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं तब जब वो भगवान के पवित्र नाम का भजन करता है, जब भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, जब भगवान को सरेंडर करता है, तब भगवान उसे अवश्य वो बुद्धि देते हैं जिससे ये नमाम उपयंति, जिससे हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते, निर्विशेषवादी ज्ञानी वसुदेव की अनुभूति तभी कर पाते हैं जब वे ज्ञान में पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो आज गजेंद्र भगवान के विभिन्न रूपों को, विभिन्न अवतारों को स्वीकार करते हुए नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिण। भले ही वो भौतिक गुणों से बिल्कुल परे हैं, निर्गुण हैं, लेकिन फिर भी जो भौतिक जगत के विभिन्न गुण स्वीकार करते हैं, उनके अधिष्ठाता बनते हैं, कभी विष्णु रूप से संसार का पालन करते हैं, ब्रह्मा रूप से संसार का सृजन करते हैं, और शिव रूप से इस संसार का विनाश करते हैं, जो राम कृष्ण नरसिंह और वराह दत्तात्रेय और बुद्धा अवतार स्वीकार करते हैं, ऐसे भगवान को मैं सादर नमस्कार करता हूँ, जो भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में ब्रह्म परमात्मा और भगवान स्वरूप में विद्यमान है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यानी वो कहते हैं कि भगवान मैं आपकी सत्ता को, आपके ऐश्वर्य को, आपके वैभव को, आपके समस्त रूपों को, आपके समस्त कर्मों को स्वीकार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कृपया मुझे शरण में ले लीजिए और मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए, मुझे इस भौतिक जगत के भंधे से बचा लीजिए, भौतिक प्रकृति के चुंगल से बचाकर मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करा। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मुझे इस ग्राह के फंदे से नहीं, मुझे इस भौतिक जगत के फंदे से, बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। कृपया मुझे संरक्षण प्रदान कीजिए और मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस माया के फंदे से छुड़ा सकते हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शुरू से पढ़ेंगे, कृपया साथ दीजिएगा। श्री बादरायणि रुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम् प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परीशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः सात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालिषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे विविराजते विभु। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु जन्तु पुनः को हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतिभिर्विचिष्टतो दुरध्ययानु क्रमण समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधव चरन्त्यलोक व्रतमव्रणीं विने चरन्त्यलोक व्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न रामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोका ययसंभवायय स्वमाययातान् यनुकालमृच्छति।
तस्मै नमः परीक्षाय ब्रह्मणि नन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणि नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्म्येण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्ण।